Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री प्रभुपाद की गौर भक्त वृंद की नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्यै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय
नमो भगवते वासुदेवाय
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। श्री श्री राधा बहरेनेश्वर इस्कान बहरेन में सायंकाल के सत्संग में आप सबका स्वागत है। कल से हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय जिसमें परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से सृष्टि लीला में भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, भगवान के ध्यान के लिए जो विराट स्वरूप का वर्णन है पहले अध्याय में, और ये भगवान पूरी सृष्टि कैसे करते हैं अपने से, इस प्रश्न पूछने से पहले कहते हैं कि आपके मुख से कथा सुनने से मेरा इग्नोरेंस, मेरी अज्ञानता जो हृदय में है वो आस्ते आस्ते नाश होती जा रही है। कल इसके ऊपर श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य हमने पढ़ा था पर्पट कि हमारे भागवत श्रवण का जो प्रूफ ये है कि उसकी रिजल्ट ये होनी चाहिए कि हमारे हृदय से अंधकार, अज्ञानता और अनर्थ नाश होना शुरू हो जाना चाहिए। वैसे भी भागवत श्रवण करने से प्रायः अभद्र नाश हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा मुख्य, भागवत केवल सुनने से निष्ठा तक भक्ति में तत्काल पहुंच जाते हैं। नित्य भागवत सेवया, रोज भागवत का श्रवण करने से भक्तिर भवति नैष्ठिकी, निष्ठा तक पहुंच जाता है। सबसे मुश्किल भक्ति के मार्ग में अनर्थ निवृत्ति में बहुत समय लगता है, लेकिन भागवत श्रवण करने से अनर्थ तत्काल निवृत्त होना शुरू हो जाते हैं, ऐसा परीक्षित महाराज अपने अनुभव एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। और सुखदेव महाराज की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आप शब्द ब्रह्म में भी निष्ठ हो। शब्द ब्रह्म का मतलब है वेद, वेदांग, शास्त्र, भागवत सबको ठीक तरह जानते हो, यह हुआ शब्द ब्रह्म। और पर ब्रह्म में भी निष्ठ हो, इसका मतलब आपका अनुभव भी भगवान का है। एक अनुभव हो लेकिन शास्त्र का सिद्धांत नहीं आता हो तो भी ठीक नहीं है, केवल सिद्धांत हो और अनुभव नहीं हो तो भी मार्गदर्शन करना मुश्किल हो जाएगा। तो शास्त्र भी आना चाहिए और अनुभव भी होना चाहिए। तो सुखदेव महाराज ने सृष्टि के विषय में प्रश्न सुनते ही सूत गोस्वामी कहते हैं भगवान श्री ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी का स्मरण किया, ध्यान किया, कहा कि भगवान की सृष्टि अनंत है, एक ब्रह्मांड नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और भगवान की सृष्टि करने वाला ब्रह्मा भी नहीं जानता, अनंत शेष जो सृष्टि का वर्णन करते करते थकता नहीं है वो नहीं जान सकता है, तो मैं कैसे सृष्टि का वर्णन कर सकता हूं। तो एकदम मंगलाचरण शुरू करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में तीन भाग हैं, इनकी प्रार्थना के 13 श्लोक हैं। 14वां श्लोक व्यासदेव को नमस्कार है, 14 श्लोक सुख स्तुति कहलाता है, ये सुखदेव गोस्वामी का मंगलाचरण है। पहले अध्याय में तो मंगलाचरण किया नहीं क्योंकि परीक्षित के प्रश्न से इतने प्रसन्न हो गए कि उनका उत्तर ही देना शुरू कर दिया, लेकिन परीक्षित ने जब दोबारा प्रश्न पूछा कि सृष्टि के विषय में, क्योंकि भगवान की सृष्टि जो है ये भगवान की ऐश्वर्य लीला है और सामान्य लोग ऐश्वर्य लीला से ही प्रभावित होते हैं, केवल प्रेमी भक्त मधुर्य लीला में आनंद लेते हैं, लेकिन प्रचार के लिए ऐश्वर्य लीला की आवश्यकता है। और परीक्षित महाराज वैष्णव है, सबके कल्याण के लिए भगवान की सृष्टि, भगवान कैसे करते हैं, कैसे शक्तियों के द्वारा सृष्टि कराते हैं, कैसे उसका पालन करते हैं, तो ये प्रश्न करते हैं। तो ये जो 13 श्लोक हैं सुख स्तुति मंगलाचरण के, इसमें सारे भागवत धर्म का निरूपण है, जो भागवत धर्म के सारे सिद्धांत इसमें आते हैं। 3 विभाग में पहले कहते हैं नमस्कार, पहले नमस्कार भगवान श्री कृष्ण को करते हैं और फिर कहते हैं सुभद्र सर्वसे नमः, नमस्कार फिर भी करते हैं लेकिन कहते हैं फिर भगवान मंगलकारी का श्रवण करना चाहिए। सर्वसे का मतलब श्रवण करना, कुछ श्लोकों में भगवत श्रवण शुभ मंगलकारी है। और फिर 3 विभाग में कहते हैं भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, प्रसीदति, भगवान प्रसन्न हो जाए। तो 3 प्रार्थना में नमस्कार तो सब में है, लेकिन नमस्कार के साथ श्रवण, श्रवण के साथ भगवान की प्रसन्नता, 3 विभाग हैं। तो कल हमने केवल पहला श्लोक ही पढ़ा था भूमिका के साथ, तो पहले श्लोक का पाठ करके फिर आगे बढ़ते हैं। पहले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी श्री शुक वाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, नमस्कार करते हैं पुरुषोत्तम को। परस, परस का मतलब परम, पुरुषोत्तम परिपूर्ण भगवान को नमस्कार करते हैं। भूयसे का मतलब परिपूर्ण, भगवान परिपूर्ण है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो भगवान से जुड़ी हुई नहीं है। तो पुरुषोत्तम परम पुरुष भगवान को नमस्कार करते हैं। क्या करते हैं वो भगवान? सदा उद्भव स्थान निरोध लीलया, वो करुणा करके भगवान सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं और समय आने के ऊपर संहार करते हैं उसका। ये 3 काम भगवान करते हैं। कैसे करते हैं? स्वयं करते हैं, बोलो नहीं, 3 गुण अवतारों के द्वारा ये कार्य कराते हैं। तो 3 लाइन कहते हैं ग्रहीत शक्ति त्रैत्याय देही नाम, 3 प्रकार के रूपों में प्रवेश अपने आप को विभाजित कर देते हैं गुण अवतार, ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए, विष्णु पालन करने के लिए और शंकर जी संहार करने के लिए। और फिर कहते हैं अंतर भवा व अनुपलक्ष वर्तमने, ये भगवान जो सृष्टि करते हैं, ये भगवान सृष्टि के अंदर भी है और बाहर भी है, कण कण में है और सर्वस्य है, इसको ऐसे अनुपलक्ष, इसको ऐसे जानना इनकंसीवेबल है। अनुपलक्ष है मतलब लक्षित नहीं किया जाता, कहां है कैसे है ये कहां माना नहीं, इनकंसीवेबल है। वर्तमानी, ऐसे भगवान जिसका कार्य अद्भुत है उसको हम अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते हैं, इसलिए नमस्कार करते हैं कि वो ही कृपा करके अपने आप को अगर प्रकट करेगा तो हम जान पाएंगे। आगे चल के सुखदेव महाराज कहते हैं भगवान आप ही मेरी वाणी के ऊपर प्रकट होकर जो आपको कहलाना है वो कहलाओ, मैं सिर्फ आपका इंस्ट्रूमेंट बन जाऊं और आप इसके वक्ता बन जाओ। इसके ऊपर कल प्रभुपाद जी की कथा बताई थी कि प्रभुपाद ने कहा कि पुस्तक भगवान ने लिखाए हैं और मैंने लिखी है, तो ऐसे भगवान के निमित्त मात्र बन जाओ। तो आज 2 श्लोक पढ़ते हैं। अब भगवान को प्रार्थना करके कहते हैं भूयो नमो सदा व्रजं छिद्दे सताम, नमस्कार करते हैं भगवान आपको। क्या करते हैं आप? दोबारा भूय, एक बार फिर नमस्कार करते हैं, बार बार आपको नमस्कार करते हैं। कल नमस्कार की महिमा भी बताई थी, नमस्कार का अर्थ होता है जो भक्ति का नवा अंग है ना, आखिरी वाला आत्मनिवेदन, नमस्कार की असल में माना है आत्मनिवेदन। न मैं अस्ति इति नमस्ते, न मैं अस्ति, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान आपका है, मैं भी आपका हूं। तो नमस्ते, एक नमस्ते हाथ जोड़ के किया जाता है, इसका अर्थ है आप आज्ञा कीजिए मैं सेवा करूं। एक नमस्ते सिर झुका के किया जाता है कि अब मैं सोचूंगा नहीं, जैसे आप कहेंगे वैसे करूंगा। एक नमस्कार दंडवत प्रणाम किया जाता है, डंडे की तरह। अब तो शरीर भी आप उठाओगे तो उठाएंगे, खिलाओगे तो खाएंगे, कहोगे तो करेंगे। हमारा अधिकार न शरीर पे है, न वाणी पे है, न मन पे है, जो आप कराएंगे वो हम करेंगे, ये पूरा शरणागत है। तो नमस्कार का स्तर है, तो बार बार नमस्कार। कल कहा था नमस्कार करने से क्या लाभ होता है, भागवत का अंतिम श्लोक क्या कहता है, नमस्कार करने से क्या होता है, पाप दुख शमनम। संकीर्तन से पाप नाश होता है और नमस्कार से दुख शमनम। हरिम प्राण, भगवान को नमस्कार करते हैं जिसके जिससे सब दुख, पाप का फल है दुख। तो जब कीर्तन करते हैं तो पाप नाश होता है, और कीर्तन के बाद प्रेम ध्वनि में नमस्कार करते हैं तो दुख भी चला जाता है, तो दोनों समाप्त हो जाते हैं, पाप और दुख दोनों। तो नमस्कार दुख शमनम, तो नमस्कार करने का नियम जीवन में पक्का है। फिर नमस्कार करते हैं किसको करते हैं, सद्वर्जने छिदे सत्ताम। सत्ताम का मतलब भक्त, और भक्तों के दुखों को जो दूर कर देते हैं, ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं जो भक्तों के दुख ताप संताप कलेश को काट देते हैं। वर्जन सद मतलब भगवान के भक्त, वर्जन छिद्दे उनके दुख को नाश कर देते हैं। परित्राणाय साधु नाम, इसका अर्थ है परित्राणाय साधु नाम। भगवान जो अपने साधुओं के सुख के लिए प्रकट होके उनके दुख को दूर करते हैं। तो ये हुआ एक भाग। दूसरा भाग है असंभवाया अखिल सत्व मूर्तये, असंभवा असताम असंभवा। दूसरा क्या है, दो ये श्लोक में दो अंग कौन से, परित्राणाय साधुना, दूसरा क्या है विनाशाय च दुष्कृतम। असताम जो भक्त नहीं है, असताम जो सत का, जिन्होंने सत कौन है, भगवान है परम सत, जिन्होंने सत्संग नहीं किया है, भगवान का संग नहीं किया है, जो भक्ति के मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, असंभवाय असंभवाय। संभव का मतलब होता है पॉसिबल, असंभव का मतलब इम्पॉसिबल। उनके अब भक्तों के आगे बढ़ने को रोक देते हैं, असंभव कर देते हैं। इसका मतलब उनके, एक तो वो दूसरों को दुख दें उससे रोक लेते हैं, और दूसरा वो जो ज्यादा पाप करें उससे भी बचा लेते हैं। अब यहां प्रभुपाद के प्रभुपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान जब मारते हैं कंस आदि को तो उनका उद्धार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान भक्तों से ऐसे, भीष्म पितामह कहते हैं प्रार्थना में कि आप समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का हित किया, उसका सारथी बना, नहीं, हमने भगवान को सीधा देखा, अर्जुन ने कहां देखा, अर्जुन तो पीछे बैठा था, दर्शन तो हमने भगवान का किया। इतना सुंदर दर्शन भगवान का करते हुए जितने भी महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए उन सबका तो भगवान ने कल्याण ही कर दिया, तो असल में लाभ तो उनको हुआ। और भगवान ने भी अपने मुख से कहा कि इस महाभारत युद्ध में मैंने किसी का पक्षपात नहीं किया। अरे महाराज, आप तो अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे थे, आप तो उंगली से उठा उठा के एक को मरवा रहे थे। बोलो नहीं, मैंने किसी का कुछ नहीं किया, मैं तो सबका हित ही करता हूं। तो भगवान हित करते हैं और भगवान के भक्त भी हित करते हैं। तो भगवान साधुओं के दुख को दूर करते हैं, और जो अभगत हैं, असुर हैं, उनके ज्यादा पाप करने को रोक देते हैं, असंभव कर देते हैं उनके कार्यों को। दो उसके लाभ होते हैं, एक तो दूसरों को दुख नहीं देते हैं और स्वयं पाप करने से बच जाते हैं, और अगर स्वयं भगवान उनका उद्धार करते हैं तो उनका भी कल्याण हो जाता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कितने भक्तों का भगवान ने उद्धार किया अपने हाथों से। तो अब तीसरी लाइन में क्या कहते हैं आगे, कैसे हैं भगवान वो? तब कहते हैं भगवान है अखिल सत्व मूर्ति। भगवान कैसे है? अखिल सत्व मूर्ति। अखिल का मतलब परिपूर्ण, जिसमें कोई कमी नहीं है, और सत्व मूर्ति का मतलब शुद्ध सत्व है। भगवान का जो स्वरूप है उसमें न मल है न मैथुन है, मल मैथुन कुछ नहीं है, वो सच्चित आनंद घन है। उसमें हमारे जैसे कोई कचरा नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है, वो कल्याणकारी आनंदमय है। तो इसलिए भगवान के शरीर को कहते हैं अखिल सत्व मूर्तये। भगवान का एक तो रूप है, मूर्ति है, सूरज अखिल, अखिल का मतलब पहला ही श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु के मंगलाचरण का, अखिल रस मूर्ति है। अखिल भगवान के लिए शब्द आता है अखिल, खिल का मतलब जिसमें कोई कमी हो, अ मतलब नहीं, अखिल मतलब परिपूर्ण। सत्व मूर्ति भगवान सच्चिदानंद घन है, सच्चिदानंद रूपाय। ये भागवत का मंगलाचरण है, भागवत के महात्म का मंगलाचरण क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे, ऐसा ही है मंगलाचरण। वो भी सच्चिदानंद रूपाय, भगवान आपका रूप सच्चिदानंद है। क्या करते हैं? विश्व उत्पत्ति हेतवे, विश्व की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, और आप इस संसार में जो आपका शरण लेते हैं उसका तापत्रय आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक विनाशाय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वयम नमो, हम सब कृष्ण को नमस्कार करते हैं। ये वे मंगलाचरण है भागवत महात्म का, एक छोटा मंगलाचरण है, एक ही श्लोक का, लेकिन परिपूर्ण इसमें सब बातें ये आ जाती हैं जो यहां सुखदेव महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं। तो भगवान का स्वरूप कोई पूछे तो क्या कहना चाहेंगे? अखिल सत्व मूर्ति, भगवान परिपूर्ण सत्व की शुद्ध विशुद्ध सत्वम, विशुद्ध सत्वम वासुदेवम शब्द्यते। जो विशुद्ध सत्व स्थिति को प्राप्त करेगा उसके हृदय में भगवान प्रकट होता है, और भगवान अखिल सत्व मूर्ति है। और अखिल सत्व मूर्ति क्या करता है? अब ये दो काम तो ऊपर हो गए, क्या हो गया? एक परित्राणाय साधुनाम, एक विनाशाय दुष्कीर्तन हो गया। कौन करता है? बोला भगवान साक्षात स्वयं अखिल मूर्ति प्रकट होके करते हैं। और क्या करते हैं भगवान? तब कहते हैं पुंसाम पुनः परमहंसाय आश्रमे विवस्थानाम अनुमृग्य दासुसे। एक भगवान के अवतार का कारण श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कुंती महारानी कहती है कि भगवान, लोग कहते हैं कि आप इनका इस काम के लिए अवतार करते हैं, धर्म स्थापना के लिए कि असुर संहार के लिए। मुझे लगता है नहीं, ये जो परमहंस साधु है ना, इनको भक्ति योग का उपदेश देने के लिए आप आते हैं। जो कुंती महारानी ने उद्घाटन किया है, शी हैज एक्चुअली अनमैनिफेस्टेड द सीक्रेट ऑफ इनकार्नेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। भगवान का अवतार भक्ति योग का, भक्ति योग परमहंसों को, केवल परमहंस जिस स्तर पे होते हैं। प्रभुपाद जी परमहंस के लिए क्या लिखते हैं? जैसे ब्रह्म परमात्मा और भगवान स्तर हैं, ऐसे सन्यास के भी स्तर हैं, कुटीचक बाहुदक परिवर्जक और परमहंस। कुटीचक संन्यास लेने के बाद अपने ही गांव में रहता है, घर से रोटी खाती है, खाता है, फिर बाहुदक थोड़ा घूम फिर के वापस आ जाता है, फिर परिवर्जक आचार्य घूमता रहता है, आता नहीं, और फिर परमहंस। तो परमहंस संन्यास का ऊपर का स्तर है। उन परमहंस महात्माओं के जो आश्रम है उनको, अब परमहंस के दो विभाग किए हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, बोले दो प्रकार के परमहंस होते हैं, एक ब्रह्मानंदी परमहंस और एक प्रेमानंदी परमहंस। ब्रह्मानंदी परमहंस ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, और प्रेम आनंदी परमहंस भगवान के धाम में भगवान की सेवा करना चाहते हैं। और जीव गोस्वामी कहते हैं यहां परमहंस का अर्थ है भगवान के शुद्ध भक्त, उनको भगवान गति देते हैं। क्या देते हैं? अनुमृग्य, उनको जो गति चाहिए, जो उनको मांगते हैं भगवान अपना संग देते हैं, अपनी लीला में प्रवेश देते हैं परमहंसों को। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। जो ब्रह्म आनंद है, आनंदी है, उनको ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। इसके लिए भी प्रभुपाद जी ने श्लोक लिख दिया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से आता है वैसे मैं उसको फल देता हूं। तो सुखदेव गोस्वामी ने दूसरे श्लोक में भगवान के अवतार के कारणों को प्रणाम किया है कि आप भक्तों की रक्षा के लिए, असुरों के संहार के लिए, परमहंसों को आनंद दे के अपनी प्राप्ति कराने के लिए, भक्ति योग का प्रचार करने के लिए और ब्रह्मानंदियों को ब्रह्म साक्षात्कार के लिए प्रकट होते हैं, आपको मेरा नमस्कार है। और अब हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं। नमो नमस्त्यस्तो ऋषभाय सात्वताम। अब फिर दोबारा कहते हैं नमो नमस्ते अस्तु, मेरा बार बार आपको नमस्कार है। ऋषभाय सात्वताम, ऋषभाय सात्वताम, सात्वताम कहते हैं भक्तों को। और यहां श्रील प्रभुपाद ने अर्थ लिखा है यादव। सात्वत कौन है? बोला यादव, जिनके यहां भगवान उनको संग देने के लिए उनके ही कुल में यदुवंशी होके प्रकट हुए, तो उनको क्या करने के लिए? ऋषभाय सात्वताम। आप अपने प्रेमी भक्तों से स्नेह करते हैं। ऋषभाय, ऋषभाय, ऋषभ का एक अर्थ होता है स्वयं प्रकाशमान, ऋषभ जिसमें ऋष में से प्रकाश निकलता है। एक ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, दी बेस्ट, ऋषभ मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ एंड अपने आप में प्रकाशमान हो। तो न कोई तो भगवान से ज्यादा श्रेष्ठ है और न ही कोई भगवान से ज्यादा सर्व प्रकाशित है। और सात्वताम, अपने भक्तों के प्रेम और आनंद देने के लिए आप आते हैं, आपको नमस्कार है। विदुर काष्टाय मोह को योगिनाम। विदुर शब्द का अर्थ बहुत हिंदी में बहुत आसान है, विदुर बहुत दूर, मतलब उनको आप नजर भी नहीं आते हैं, बहुत दूर होते, फार अवे, विदुर विशेष दूर, मतलब पास में हो तो भी नहीं दिखाई दोगे। विदुर का मतलब जैसे भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में खड़े हैं लेकिन दुर्योधन पहचान नहीं पा रहा है, तो उस मूर्ख के लिए सामने होते भी हुए भी विदुर है, बहुत दूर है। तो विदुर काष्टाय कुयोगी नाम, जो योगी नहीं है, कुयोगी का मतलब जो भक्ति के मार्ग पर नहीं चलते हैं वो कुयोगी हैं, उनके लिए आप नहीं मिलते हो, भले सामने हो तो भी नहीं मिलते हो। कितने लोग जब भगवान श्री कृष्ण धरती पे थे तब उनको पहचाना? कोई उंगलियों पर गिनने जाते, पांच पांडव हैं, कोई एक कुंती है, कोई द्रौपदी है और भीष्म पितामह, ऐसे विदुर है जस्ट फिंगर पे काउंट करने जाते। बाकी लोग कृष्ण को स्वयं भगवान करके मानने वाला कोई नहीं था। तो ऐसे कुयोगियों को भगवान सामने होते हुए भी नहीं दिखते। जैसे मंदिर में आते हैं तो कुछ लोग कहते हैं अरे मूर्ति है, इसमें क्या देखना है? अब है भगवान, चेतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो उनको जगन्नाथ बांसुरी बजाता हुआ कृष्ण दिखता है, लेकिन आपको कभी दिखा है ऐसे? कभी जगन्नाथ दिखा है आपको बांसुरी बजाते हुए? नहीं। लेकिन महाप्रभु को तो वो त्रिभंग ललित कृष्ण दिखता था। अब वो इसका मतलब है कि भगवान सामने होते हुए भी नहीं दिखता है। और ये सातवें अध्याय भगवद गीता में इसके लिए कौन सा श्लोक है? नाहम प्रकाशत सर्वसा योग माया समावृत। क्योंकि वो लायक नहीं है इसलिए मैं अपने आप को योग माया से ढक देता हूं और उनको महामाया से ढक देता हूं। अब डबल पर्दा है ना, वो देख सकते हैं हवाई जहाज एरोप्लेन में जो विंडो होते हैं उसमें डबल कांच होता है, बाहर भी होता है अंदर भी होता है ना। कभी कोई बच्चा शरारती अंदर से तोड़े तो बाहर वाला तो पक्का बच्चा रहे ना। तो ये डबल डबल पर्दा है भगवान का, कि मैं तो अपने आप को योग माया से घूंघट निकाल के बैठ जाता हूं। भले गोपियों के बीच में, गोपी तो सयोगी हैं, कुयोगी नहीं हैं, लेकिन गोपियों के बीच से नाथ से भगवान गए तो कहां चले गए थे? कहीं भी नहीं चले गए थे। किसी गोपी का वो दुपट्टा लेके ऐसे घूंघट में ऐसे बैठ गए थे, कोई पहचान नहीं रहा था, उन्हीं के बीच में घूम रहे थे, उन्हीं के साथ थे, उनको देखे कहीं से कहां से आए, उन्हीं के बीच में प्रकट हुए ना, तो कहीं गए नहीं थे, लेकिन वो दिख नहीं रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने आप को घूंघट में योग माया ढक लिया था। बोला भगवान अपने आप को ढक लेते हैं तो क्या वो हमको देखते हैं? बोला हां, आप नहीं देख सकते भगवान को, लेकिन भगवान आपको देख सकते। दूसरा श्लोक कहता है भगवान को दिखता है लेकिन आप भगवान को नहीं देख सकते, तो कोई योगियों को नहीं मैं दिखता हूं। क्या शब्द हो गया? विदुर काष्ठा, विदुर काष्ठा या मुह कुयोगी नाम, जो योग्य नहीं है। और योग्य कौन नहीं है? जो भक्ति नहीं करते हैं उनको मैं नहीं दिखता हूं उनके सामने होते हुए। निरस्त साम्या, निरस्त साम्या, मेरे समान कोई नहीं है, भगवान के समान कोई नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान के समान कोई नहीं है, न मैं अधिक, मैं और न अधिक है। निरस्त साम्या अतिशय न, और न तो भगवान के बराबर है, न कोई भगवान से महान है, न साम्य उसके बराबर कोई नहीं है, और न मैं अस्ति किंचित धनंजय, मेरे से ऊपर कुछ नहीं है अर्जुन, न मेरे समान है, न मुझ कुछ से ऊपर है। और फिर जो शब्द है ये बड़ा अद्भुत शब्द है, राधसा। वैसे राधसा शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी ने लिखा है राधसा बाय अपुलंस, स्वधामिने अपने धाम में, ब्रह्मणी रंसते नमः। इस आखिरी लाइन का रसिक ब्रज का अर्थ क्या करते हैं? राधसा, राधा के साथ, स्वधाम ने, स्वधाम वृंदावन में, रंसते रमण करते हैं, उस भगवान को श्याम सुंदर राधा के संग ब्रज में जो रमण करता है वो तो कुयोगियों को कभी देखने में भी नहीं आएगा, उनके बस की बात भी नहीं है, वो उसको समझ भी नहीं पाते। तो ये जो राधसा शब्द है इससे राधा का अर्थ और सुधाम का वृंदावन अर्थ, जैसे रस, जैसे दूसरा श्लोक है भागवत का, क्या है दूसरे श्लोक में शब्द? निगम कल्पत्रु गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पीदम भागवतम रस मालयम। और रस मालयम का अर्थ क्या है? रस मालयम का क्या भाव है? हाँ, रस है, लेकिन रस कौन है? अखिल रस मूर्ति कौन है? कृष्ण। रसो वही स कृष्ण, और रस में मतलब उस रस का जो आस्वादन करती है वो कौन है? राधा। तो रस में राधा, और आलयम का मतलब, जैसे विद्या जहां होती है वहां विद्यालय होता है, जहां दवाई होती है वो औषधालय औषधालय होता है, और जहां दुख होता है वो दुखालय होता है, और जहां रस होता है वहां रसालय होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? राधा कृष्ण के रस की भूमि। भागवत क्या है? राधा कृष्ण के रस का आलय है। और इसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भागवत श्री कृष्ण अंग प्रति श्लोके प्रति अक्षरे गोपी कृष्ण नाना रंग। तो रसालय का मतलब है राधा कृष्ण निकुंज में जैसे विहार करते हैं, ये रसालय है। रस ये है असल में कि रसमय कृष्ण है और उस रस का रसास्वादन करने वाली राधा है। इसको जो ये बार बार इसको समझने का प्रयास करो, तो इस श्लोक के इन शब्दों का अर्थ है कि वो भगवान जो भक्तों को तो भक्तों के तो संग देते हैं, ऋषभ आए उनको एसोसिएट। प्रभुपाद के सारे तात्पर्य में है कि भगवान अपने भक्तों को अपना एसोसिएट बनाते हैं, संग देते हैं, जैसे यदुवंशी भगवान के संग में थे, अपने धाम में भी उनको प्रवेश कराते हैं। लेकिन जो कुयोगी हैं उनके लिए भगवान बहुत दूर की बात है, वो उसको समझ भी नहीं सकते हैं। और यहां श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के मैनिफेस्टेशन मतलब प्रकट्य के दो भाव हैं। एक भाव क्या है? एक भाव यह है कि वो यदुवंशियों के कुल में पैदा हुए, तो यदुवंशी कहते हैं, भगवान का नाम ही यदु कुल श्रेष्ठ हो गया, यदुनंदन हो गया। फिर कहते हैं वही भगवान वृंदावन में यशोदा का यशोदा दुलाल है, नंद दुलाल है, और वो अर्जुन का सखा भी है और गोपियों का प्रेमी भी है, सुधामा और श्रीधामा मंदु मंगल का मित्र है। ये भगवान श्री कृष्ण का एक भाव है जो अपने धाम में है। और अब जो दूसरे, अब प्रभुपाद जी कहने, जो दूसरे भगवान के इस अखिल सत्व मूर्ति को नहीं जानते हैं अथवा नहीं मानते हैं, वो भगवान के निराकार का जो ध्यान करते हैं प्रकाश का, उनके लिए भगवान क्या है? ब्रह्म ज्योति। उस ब्रह्म ज्योति में एक कोने में थोड़ा सा बादल आ जाता है, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है किसी एक जगह क्लाउड आ जाए, ऐसे महत तत्व का एक क्लाउड आता है और उस एक बादल के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड भौतिक जगत के बनते हैं, और उनमें से एक ब्रह्मांड है जिसमें हम रह रहे हैं। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, जो एक ब्रह्मांड को भी नहीं जान सकते हैं वो अनंत ब्रह्मांड को कहां से जानेंगे और उनके सोर्स को कहां से जानेंगे। तो दूसरे जो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं वो तो असल में भगवान के बाहर के बाहर बाहर का जो प्रकाश है उसका ध्यान करते हैं, तो वो कहां से भगवान को जान सकते हैं? विदुर काष्ठा है, उनके लिए भगवान बहुत दूर है। और फिर नीचे लिखते हैं प्रभुपाद जी, भगवान ने अपने धाम की परिभाषा बताई है, न तद्भाष्यते सूर्यो, कि भगवान का धाम में कोई प्रकाश की जरूरत नहीं है। फिर और भी श्लोकों से भगवान ने इस बात का उल्लेख किया है कि भगवान के मुख्य प्रकाश के कारण भक्त कहते हैं हम आपकी भक्ति करते हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं, आपके प्रकाश के कारण हम देख नहीं पा रहे हैं, आप अपने प्रकाश के पर्दे को हटाओ तो हम आपके मुख का दर्शन कर सकें। अब आगे का श्लोक पढ़ते हैं 15वां, ऐसे भगवान को कैसे जाना जा सके? जो भगवान ऐसा अपना मित्र बना देता है किसी को, श्रीधामा सुधामा मधु मंगल मित्र हैं, साथ खेल सकते हैं। प्रभुपाद ने एक भजन कैसा लिखा जाते हुए जलदूता में, कृष्ण कब वापस हम पेस्चरिंग ग्राउंड में गैया चराने हुए साथ कब चलेंगे। You remember this one song Prabhupada has written on Jaldoota? भगवान कब वापस वृंदावन में गौचारण लीला में साथ घूमेंगे। ऐसा भाव जो है ये कैसे प्राप्त हो, तो ये श्लोक सबको याद करना चाहिए। और प्रार्थना प्रचार करने से पहले, प्रवचन देने से पहले, ये अगर 13 श्लोक याद हो जाए तो बहुत अच्छे हैं। ये सुखदेव महाराज का मंगलाचरण है, लेकिन ये श्लोक आप सब उच्चारण कीजिए। यत कीर्तनम यत स्मरणम यद ईक्षणम यद वंदनम यश्रवणम यद अहरणम। ये 6 बातें हो गई। जिस भगवान का, यत का मतलब जो भी, इस भगवान का, कौन सा भगवान? राधसा, राधसा स्वधाम ने रंसते, जो नित्य अपने भक्तों से प्रेम करने वाला स्वधाम में भगवान बैठा है और अपने धाम में आने के लिए आपको निमंत्रण देने के लिए आता है, उस भगवान को पाना है तो क्या करना पड़ेगा? यद कीर्तनम, उसका कीर्तन करो। और कीर्तन की परिभाषा श्रील प्रभुपाद ने क्या लिखा है, वैसे 4 कीर्तन आप समझ लीजिए। नाम कीर्तन भगवान का हम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको बोलते हैं नाम कीर्तन। एक होता है भगवान के धाम का कीर्तन, जैसे भगवान के धाम का कीर्तन, न तद्भाष्यते सूर्यो, ये भगवान के धाम का कीर्तन है। कैसा भगवान का धाम है? चिंता मणि पर कसद मसो कल्प वृक्ष, ये भगवान के धाम का कीर्तन है। फिर भगवान के रूप का कीर्तन, बंसी विभूषित करानुभात, भगवान के हाथ में बंसी है, हाँ, कर में सुंदर विभूषण है, हाँ, गले में वैजंती माला है, ये भगवान के रूप का कीर्तन है। तो भगवान के रूप का कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के धाम का कीर्तन, और श्रील प्रभुपाद ने यहां लिखा है एक कीर्तन गा के करते हैं और एक कीर्तन भागवत और भगवत गीता का पाठ करते हैं, वो भी कीर्तन है। इस पर्पट में लिखा है भागवत को पढ़ते हैं, ये भी कीर्तन है। तो यद कीर्तनम यद सुमरणम, असल में टेक्निकली जो माला है ना हमारी जप में, इसको संस्कृत में कहते हैं सुमरणी। सुमरणी का मतलब जिसके ऊपर भगवान का सुमरण किया जाए। तो ये जो हम चैंटिंग करते हैं ना, इट इज एक्चुअली सुमरण, ये भगवान का सुमरण है, बार बार उसको सुनते हैं ना, तो ये सुमरण है भगवान का। इसका माला का नाम ही सुमरणी है, टेक्निकली इट इज कॉल्ड सुमरणी। तो ये जो सुमरण भगवान का करता है, सुमरण कब किया जाता है, जब कोई सुनाने वाला हो तो सुनना चाहिए, श्रवण हो गया। जब कोई सुनने वाला हो तो सुनाना चाहिए, यह कीर्तन हो गया। न सुनने वाला है न सुनाने वाला है तो बैठ के सुमरण करना चाहिए। सुमरण करने का मतलब जो आपने पहले सुना है, जो आपको मंत्र मिला है, उसका सुमरण करो। क्या कर रहे हैं, सुमरण कर रहा हूं, भगवान का सुमरण कर रहा हूं। सुमरण का आचार्य कौन है, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज कैसा सुमरण है, प्रहलाद महाराज का खंभे में भी भगवान दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं था उसमें, उसको दिखाई दिया, उसको दिखाई दे रहा था। ऐसे कहा है कि जब हिरण्याकश ने ऐसे उंगली उठाई कि तुम्हारा भगवान कहां है, तो भगवान हिरण्याकश की उंगली के ऊपर नजर रखी कि जहां उंगली रखेगा वहीं मैं दिखाऊंगा, नहीं अगर वहां हो गया तो मेरा भक्त को तो उधर दिखना चाहूं मैं। तो उसने कहा इस खंभे में, भगवान एकदम खड़ा हो गया उधर। हाँ, प्रहलाद बोलता है, बोले कहां है, बोले देखो तू कुयोगी है, तुम्हें नहीं दिखता है और मेरे को दिख रहा है। तो भगवान भक्त को दिखता है। तो ये जो बात है यहां सुमरणम, सुमरणम, सुमरण करने से क्या होता है, जहां देखो वहां भगवान ही दिखता है, सर्वस्व सर्व सब जगह भगवान। और सुमरण करने वाले को कहीं भी कोई चीज दिखेगा वो भगवान के साथ जोड़ लेगा तत्काल, कुछ उसको अलग दिखेगा नहीं। तो सुमरणम, और तीसरा क्या है, यदा ईक्षणम। ईक्षणम का मतलब क्या है, दर्शन करना, आंख आंख से मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करना। ईक्षणम भगवान के दर्शन मात्र से, और दर्शन करने की भी विधि है। पहले तो कहना चाहिए भगवान हम क्या आपको देखेंगे, हमारी तो भौतिक आंखें हैं, लेकिन आप देख लेना कि हम आपके आपके दर्शन के लिए आए हैं, आप हमको देख लो। भगवान देख ले तो ये बहुत बड़ी बात है, हम क्या देखेंगे भगवान को। अगर देखना है तो भगवान के चरणों से देखना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। जब प्रणाम प्रणाम करते हैं तो प्रार्थना करनी चाहिए, केवल ऐसे नीचे गिरना नहीं है। जो भी अपनी भाषा में दो शब्द आते हैं वो नाम लेके भगवान जिसको प्रणाम कर रहे हैं, भाई नरसिंह देव को प्रणाम कर रहे हैं तो कहें लक्ष्मी नरसिंह देव, हे प्रहलाद के प्रेम के खातर आपने प्रकट हुए, हम आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे बोल के कहना चाहिए। गौर निताय को चरणाम प्रणाम करते हैं तो पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम, ऐसे प्रणाम करना चाहिए। तो ऐसे प्रणाम करते समय भी प्रार्थना करनी चाहिए, असल में प्रणाम के साथ प्रार्थना भी करनी चाहिए, उसको वंदना कहते हैं। ईक्षणम, ईक्षणम का मतलब दर्शन करना, तो भगवान का दर्शन, तो भगवान के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए मंदिर में, अपने घर में भगवान को विराजमान करना चाहिए। जहां कहीं भगवान का चित्र पड़ा होगा तो भगवान का दर्शन होगा, तो ईक्षणम। तीसरा यद वंदनम, वंदना करना, वंदना करना मतलब प्रार्थना करना। वंदना का कौन आचार्य है, वंदना भक्ति का आचार्य कौन है, अक्रूर। अक्रूर की वंदना क्या है, वो के भगवान को अपनी दिल से कहना है, अपनी भाषा में कहना है। ऐसा नहीं है कोई संस्कृत पढ़ोगे तब भगवान सुन समझ पाएगा, या ब्राह्मण बनेंगे तब भगवान समझ पाएगा, कि संन्यास लेंगे तो भगवान समझ पाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी कहीं से भी किसी भी भाषा में भक्ति तो ये है, भक्ति तो ये मानव क्या, पशु पक्षी भी भगवान से प्रेम कर सकते हैं। मानव तो दूर की बात है, पशु पक्षी भी भगवान से प्रेम कर सकते हैं। और भगवान तो सर्व का कल्याण करते हैं, महाप्रभु के कीर्तन में शेर और हिरण एक दूसरे को आलिंगन करके नाच रहे थे, उनके अंदर भी विरोध समाप्त हो गया। जटायु को भगवान गोद में लेके राम जी बैठते हैं, तो ऐसा ये भागवत धर्म में तो सबको अधिकार है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कह के मैं भगवान को नहीं पा सकता हूं। चोर डाकू ने भगवान को पा लिया तो फिर साधन करके कोई पाए तो बड़ी बात है, कोई मुश्किल है क्या? ऐसे अगर कोई साधन से पाता तो फिर कुब्जा को कैसे मिल गया, कुब्जा ने कौन सा साधन किया था? भगवान ने जाके बुला के कहा हे सुंदरी इधर, उसने बोला सब मुझे बंदरी कहते हैं, ये सुंदरी कौन कह रहा है? वो तो कुबड़ी थी, बड़ी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। तो भगवान ने कहा कि हमको लगा दो अंगराग। अब भगवान सेवा मांग रहे हैं भक्त से, देखो भगवान अपने आप सेवा मांग के ले रहे हैं अपने भक्त से। उसने अंगराग लगा दिया तो क्या कर दिया भगवान ने, तत्काल फल क्या दिया, एक पांव के ऊपर पांव रखा, चुटिया में हाथ लिया और दूसरे हाथ से पीठ को ऐसा मुक्का मारा, हमारे डॉक्टर हरीश कहां के आर्थोपेडिक की जरूरत नहीं, ऐसे ही कुबर सीधी हो गई और ऐसी सुंदरी हो गई, ऐसी सुंदरी हो गई कि पूरे मथुरा में ढंढोरा पीटा गया, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं जाए, ये कृष्ण के पास जाओ सब सुंदर हो जाओ, सारी लेडीज कृष्ण के पक्ष में हो गई कि इतना सुंदरी बना दिया इसको और कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो ऐसा ये भगवान है जिसके दर्शन मात्र से क्या फल होता है, फल की बात अभी करते हैं, ये बात कर रहे हैं ईक्षणम के बाद, वंदनम के बाद, यह शरवणम जो भगवान का शरवण करता है, और अहरणम, अहरणम का मतलब पूजा करना, अहरणम पूजा को कहते हैं, भगवान को भोग लगाना, भगवान की आरती करना, सर्वस्य अर्पण करना, इसको होता क्या है अब पढ़िए बोलिए, लोकस्य सद्यः विधनोति कल्मषम्। सद्य का मतलब अभी अभी इसी वक्त तत्काल, ए सब का, लोकस्य कोई भी हो, लोकस्य का मतलब कोई भी हो, लोक में, लोक में कोई भी हो, एकदम विधनोति कलमश, सारे कलमश नाश, सारे दुख ताप संताप समाप्त हो जाएंगे। तस्मै इसलिए, तस्मै शुभद्रा सर्वसे नमो नमः। इसलिए ऐसे भगवान, कैसा भगवान है, शुभद्र। भद्र किसको कहते हैं, भद्र का मतलब ऑस्पिशियस और सुभद्र का मतलब सु आगे लगा विशेषण। कैसे भगवान, सर्व मंगलकारी, सिर्फ सुभद्र मंगल करे फिर अमंगल भी हो सकता है ना, लेकिन सुभद्र का मतलब एक बार मंगल हुआ फिर अमंगल कभी नहीं होगा, आगे सु लगा दिया। ये सुभद्रा सर्व से उसका अगर श्रवण करेंगे, उसकी कथा सुनेंगे तो क्या होगा, सर्व से नमो नमः, तो फिर उसको हम नमस्कार करते हैं, उसकी कथा सुनने से सारे दुख ताप संताप नाश हो जाते हैं। तो ये है साधन, ये भक्ति के कुछ अंग हैं, इसके द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अब एक श्लोक आगे और पढ़ते हैं, सारे पाप नाश हो जाते हैं। ऐसा कौन करते हैं, विचिक्षणाय चरणास उपासदना। विचिक्षणा, विचिक्षण किसको कहते हैं, विशेष जिसके जो कवि हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो साधु हैं, जो भक्त हैं, वो जानते हैं। विचक्षणा ये चरण उपासनात्, उपासनात् जो बुद्धिमान हैं वो भगवान के चरणों की उपासना करते हैं, भगवान के चरणों का शरण लेते हैं। विचक्षणा जो समझदार हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो भगवान के चरणों का शरण लेते हैं। भगवान के चरण कैसे हैं, भगवान के चरणों को क्या कहा है, भवसागर को पार करने वाली नौका। तब पाद पोते न पाद पल्लव, भगवान के चरण कमल महात्माओं ने, विचक्षण संतों ने भवसागर को पार करने की क्या बना दी है, बोट। वो भगवान के चरणों का शरण लेते हैं। संगम व्युदस्य उभ्यस्य अंतर आत्मनः, विचक्षणा जो बुद्धिमान है, भक्त है, महात्मा है, वो भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं। संगम व्युदस्य उभ्यतो, उभ्यतो का मतलब क्या है, इस जन्म में और आगे स्वर्ग आदि। उभ्यतो, उभ्य माने दोनों, अभी का और आगे का। संगम विदस्य नहीं चाहिए। अब ये है कसौटी, कसौटी का कसौटी समझते हो, कसौटी उसको कहते हैं जिसके ऊपर सोने को ना देखा जाता है कितना क्रेट है। कसौटी क्या है, वित्त विचक्षण कौन है, बोलता हमारे को न स्वर्ग चाहिए न इस दुनिया का सुख चाहिए, हमारे को तो सिर्फ भगवान के चरणों की सेवा चाहिए। यह कहना बहुत आसान है, हमने तो स्वर्ग का सुख अभी पता नहीं किया है, लेकिन एक बार देख कुछ को पता लग जाए तो एक महात्मा को मैं कहते सुन रहा था, स्वर्ग तो दूर की बात है, यहां किसी की अच्छी गाड़ी देखते हैं तो भी कहते हैं कौन सा मॉडल है, कितना एवरेज देती है, मन करता है कि इसमें घूमे, तो अभी तो हमारा मन इधर की गाड़ी में अटका हुआ है, तो वे जो स्वर्ग के विमान देखे तो भगवान भूल जाएंगे। विचक्षणा, इसमें विज जो लगा हुआ है वो कहता है संसार में कहीं बंधन में फंसने वाला नहीं, यहां के भोग में नहीं अटकने वाला है। वो दोनों संगम व्युदस्य उभौ, संगम व्युदस्य उभौ, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एग्जिस्टेंस, गिविंग अप व्युदस्य कंप्लीटली, अटैचमेंट जो स्वर्ग आदि की जिसके मन में है नहीं, जो कोई भोग नहीं चाहता है, उसको विदस्य कहते हैं, उसको विचक्षणा कहते हैं, उसको भगवान क्या देते हैं, विधनोति ही ब्रह्म गतिम गत कलमास, भगवान उसको क्या करते हैं, विधनोति, विंदंति दे देते हैं, क्या देते हैं, ब्रह्म गतिम, ब्रह्म गति किसको कहते हैं, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, ब्रह्म गति दे देते हैं, उसका मतलब उसको एकदम ब्रह्म के स्तर पर पहुंचा देते हैं। गत कलमाहा, कोई उसको परेशानी नहीं उठानी पड़ती है, पाठ नहीं पढ़ना पड़ता, समाधि नहीं लगानी पड़ती है, नाक नहीं दबाना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, गत कलमा, कोई परेशानी नहीं, और भगवान उसको ब्रह्म गति देते हैं। तो भगवान की गति, ब्रह्म गति का ब्रह्म गति, इसमें जीव गोस्वामी की कमेंट्री श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है, ब्रह्म गति, ब्रह्म गति का अर्थ लिखा है जीव गोस्वामी ने, भगवान जैसा स्वरूप भगवान के धाम में प्राप्त करना, ये ब्रह्म गति का अर्थ जीव गोस्वामी ने ऐसे लिखा है। इसका कुछ महात्मा कहते हैं भगवान की गति को जान जाते हैं ऐसे भक्त, जिसको दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, भगवान की गति को तो वेद भी नहीं जानता है। लेकिन वो केवट क्या कह रहा था राम जी को, मैं जानता हूं आपके पांव की रज को, अब भगवान की गति को जानता है, भगवान के चरणों की रज के महत्व को। केवट कौन सा पढ़ा लिखा बुद्धिमान पंडित था, लेकिन भगवान राम के चरणों की रज के प्रभाव को जानता था। और ये ग्वाल बाल क्या कहते थे कृष्ण को, अरे हम तुमको जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, हम तुम्हारी गति को जानते हैं, वो कह सकते थे। और गोपियां कहते हैं हम तो इसको अंदर बाहर से जानती हैं। तो भगवान को जानते कौन है, भगवान के प्रेमी भक्त, जिसको भगवान जाना है, कोई और अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकता है। सुखदेव महाराज कहते हैं ऐसे जो विचक्षणा महात्मा है, जिन्होंने संसार के भोग का, स्वर्ग आदि लोगों के भोग का पूर्ण रूप से परित्याग किया है, सामने आए तो भी देखने को तैयार नहीं है। गोपियां जब ढूंढ रही थी कृष्ण को, तो भगवान विष्णु सामने खड़े हो गए, प्रणाम करके कहा आपने कृष्ण को कहीं देखा। वो विष्णु में आकर्षित नहीं हुई, भगवान है ये तो जानती थी, लेकिन उससे कुछ लेना देना नहीं, आपको प्रणाम है नारायण, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहीं देखा। तो जो कहीं भी नहीं अटके। विचक्षणा का अर्थ यहां परिभाषा ये हुई, उसको भगवान क्या देते हैं, ब्रह्म गति, अपने अपने लोक को दे देते हैं, अपना स्वरूप दे देते हैं, अपना लोक देते हैं, अपना संग दे देते हैं, अपना साथ दे देते हैं, और उसके साथ हो जाते हैं तस्मै। ये तो बोल दिए सब, तस्मै सुभद्रा सर्वसे नमो नमः। ये श्लोक किसी को याद है, सब कोई एक है इधर जिसने याद किए तेरा श्लोक? अरे भैया अगली बार प्रयास करना, याद कर लेना, नौजवान बच्चों को याद करा लो, बहुत अच्छे श्लोक है, सो वंडरफुल, आपको हृदय से लगेगा कि भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। रोज की प्रार्थना करनी चाहिए, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, एक बार लिख के सामने रख लेंगे तो मेरे ख्याल में समय हो रहा है इसके पर्पट में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, विचक्षणा के लिए लिखा है कि जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 श्लोक अंत में कहे हैं, सर्व गुहत्मम भूयो शुणो में परमम वच यते हम प्रियमाणाय तव हित काम वक्ष्यामि तव हित कामया मन मना भर्म भक्तो धर्म सर्व धर्मान परित्यज। ये है विचक्षणा की शिक्षा, प्रभुपाद जी कहते हैं ये है विचक्षणा की शिक्षा। और ऐसे विचक्षण कौन है, तो जीव गोस्वामी कहते हैं ब्रह्म गति का मतलब भगवान अपने धाम में उनको स्थान दे देता है, भगवान जैसा रूप प्राप्त हो जाता है। और यह इतना मुश्किल नहीं है, बस केवल कीर्तन करना है, श्रवण यत कीर्तनम यत श्रवणम यत ईक्षणम, बस इतना करने से ये प्राप्त हो जाता है, इसके लिए कुछ और कुछ प्रयास अलग करने की जरूरत नहीं है। अब आगे वाला श्लोक तो ऐसा है जिसमें तो सुखदेव गोस्वामी ने कहता कुछ भी करो अगर कृष्ण अर्पण नहीं करो तो कोई लाभ नहीं होगा। ये श्लोक पढ़ के कथा इसके ऊपर कल करेंगे, श्लोक कल तो कथा नहीं है, फिर जब दोबारा मिलेंगे तब ये कथा करेंगे परसों या जो भी हो। अब इस श्लोक को पढ़ लीजिए, तपस्वीनो दान परा यशस्वीनो मनस्वीनो मंत्र विदहा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यद अर्पणम् तस्मै सुभद्रा सर्वसे नमो नमः। कितना भी कोई बड़ा तपस्वी हो, दान देने वाला हो, यशस्वी हो, मननशील मनि मुनि हो, मंत्र विधा बड़ा वेदज्ञ हो, सुमंगलई बड़ा मंगल कार्य यज्ञ करने वाला हो, लेकिन कृष्ण अर्पण नहीं किया तो कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं, ये सब बेकार। एक शब्द नहीं कहा, दान देने वाले में नृग के बराबर कौन दानी होगा, जिसने गाय कितनी दान की थी, कह रहा था धरती के रेत के कण नाप गिन सकते हो, आसमान के तारे गिन सकते हो, मैंने दी है इतनी गायों की गिनती नहीं कर सकते हो, लेकिन कृष्ण अर्पण नहीं किया तो निर्ग को भी गिरगट बनना पड़ा। इतना करने के बाद केवल कृष्ण अर्पणम नहीं कहा, तो तपस्वी कितना भी बड़ा तपस्या करे लेकिन भगवत अर्पण नहीं, तपस्या तो इतनी बड़ी हिरण्यकश आदि असुर ने की, भगवत अर्पण नहीं की तो क्या लाभ हुआ, सर्वनाश हो गया कि नहीं हुआ, कैसी कठोर तपस्या की। तो तपस्वी अगर कृष्ण अर्पण नहीं करता है, दान देने वाला कृष्ण अर्पण नहीं करता है, दान देने वाले की 2 मिनट की कथा टाइम, दान देने वाला बहुत मुश्किल है, दान देना ये भी बहुत मुश्किल काम है। एक कंजूस, बहुत कंजूस सेठ मथुरा चला गया, और जैसे स्नान करने के लिए घाट पे गया तो पंडित ने कहा एक घाट हमारा है, पहले दक्षिणा दो फिर स्नान करो। बोला महाराज हम पढ़े लिखे हैं, अपने आप संकल्प कर लेंगे। बोला घाट तो हमारा है तुम्हारा नहीं है, स्नान करने का कुछ देना पड़ेगा। बोला कुछ लाए नहीं है जेब में, पत्नी के पास भी कुछ नहीं। बोला कोई बात नहीं, आपका नाम बताओ एड्रेस बताओ, हम आपके घर आके ले लेंगे। नाम लिख लिया, ये तो चला गया। पंडित जी थोड़े दिनों के बाद घर के दरवाजे पे पहुंचा, घर वाले ने कहा पंडित आ रहा है 125 रुपया उसको देना है, लिख के आयो। बोला मैं ऐसे करता हूं, मैं मरने का ढोंग करता हूं, मेरे ऊपर सफेद चादर डालो, तुम रोना शुरू करो। पंडित जी अंदर आया तो रोना शुरू हो गया। बोला क्या हो गया? बोला सेठ जी चल बसे, पंडित जी कहता है बड़ी दुख की बात है, हमारा अच्छा यजमान था, हम तो मथुरा के पंडे हैं, इसका अग्नि संस्कार करके ही जाएंगे अभी, हमको बहुत अच्छा करने आता है क्रियाकर्म। अब स्त्री ने जाके कान में कहा पंडित अपने पति को कि ये तो कहता है अग्नि संस्कार करूंगा। बोला वैसे मैं बूढ़ा हूं, किसी काम का नहीं हूं, पड़ा हूं, काम धाम होता नहीं है, लगा दे मेरे को आग, ले चलो अग्नि संस्कार करने के लिए। वो तो रुपया देने से इतना घबरा रहा था कि और उठाई अर्थी। अब बच्चों ने कहा किसी काम का नहीं है, ले चलो इसको, चलते शमशान पहुंच गए। पंडित जी ने कहा ये तो आग लगाने को तैयार है और ये अभी भी सोया है चुप करके। पंडित का हम तो मथुरा के पंडे हैं, किसी का भी दान पकाते हैं लेकिन इस कंजूस का नहीं पका पाएंगे। उसने कहा रुको रुको, मैं भी बहुत बड़ा मंत्र जानने वाला पंडित हूं, कच्चा पंडित नहीं हूं, एक इसके कान में मुझे मंत्र बोलने तो हो सकता है उठ जाए। उसके कान के पास जका के कहा 125 रुपया मैंने काट दिया, अभी आपको देना नहीं पड़ेगा दान। उठ के बैठ गया। सबने कहा ये पंडित तो बहुत बड़ा है, मरे को जला देता है। तो ऐसे लोग दान में डरते हैं, ऐसे डरते हैं कि मरने का भी नवा ड्रामा कर लेते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो ये हमारे 17 श्लोक हमने शुरू किया है, 13, 14, 15, 16, 17, 12, 13, 14, 15, 16, 17 छः हो गए, बाकी 5 और हैं, 5-6 और हैं। एक दो बार बैठेंगे तो पूरा करेंगे, बहुत अच्छे हैं आगे श्लोक। हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा।